Ram, 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 दूसरों सुख दो जिन सुख हमारे लिए बाधक हो रहे हैं, घातक है, तो फिर दूसरों को बढ़िया चीज देनी चाहिए घटिया बढ़िया देनी चाहिए, बढ़िया देनी चाहिए पहली देनी चाहिए अधिक देनी चाहिए। जिन सुयोग जिन सुख देंगे उसमें उसका कहीं अहित तो नहीं होगा, ये चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। उसका हित होगा, हित आपके हित में इसे ही चर्चा है। उसका क्या होगा, क्या दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ठीक है, वो फिर तो नहीं जाएगा, तो फिर जाएगा तो आसती फंसेगा, आपके जाने थोड़ी फंसेगा। ये तो बात स्वास्थ्य की है, मानो बहाना बाजी है कि जिसको सुख देंगे वो सुख फंस जाएगा। कैसे बात करे, आपकी नीयत में खराबी है और कोई बात वो ठीक है, फंस जाए तो आप कभी उसको आप पर जिम्मा नहीं है। हम दूसरों सुख देने से अपना हित होता है, ये पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। इस सुख की आसक्ति निवृत्ति परायण भक्ति योग से कैसे मिटाते हैं, और इससे कैसे जरूरत नहीं है, दूसरे दूसरे से कैसे की जरूरत, सत्य मिटेगा स्वाभाविक। ये बात मैंने कही थी कि बड़ी भारी भीड़ में चढ़े हुए भाई बहन है, जिस बहन की गोद में बालक है वो बालक को वैसी भीड़ में भी सुला देती है, वैसे नहीं थोड़ी जगह होती तो बच्चे को अपने गोद में सुला देती है। उसका जो भाव है कि बालक को सुख हो तो वो उसको सुला ही देती है। इस वजह से दूसरे को सुख देने से अपने सुख की इच्छा निवृत्त होती है, नियम है ये, कैसे वैसे नहीं चलती है, आसक्ति मिटती है। भक्तियों से कैसे मेरे भक्तियों से भगवान को प्रार्थना करे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारे, भगवान के पुकारने से भगवान की कृपा विशेष होती है। ऐसे भगवान की कृपा तो सब जगह होती है, परंतु भगवान की पुकार करने से प्रार्थना करने से वो जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है। जैसे वर्षा बरसती है तो पानी तो उसे पड़ता ही है, पर सर्वो कोई परात रख दो तो उसमें जल आ जाता है। ऐसे कृपा तो स्वतः सब पर बरस रही है, अपने सुख की इच्छा छोड़ दूसरे इसकी इच्छा कर भगवान के सन्मुख, भक्ति से भगवान के सन्मुख हो जाता है। सन्मुख होने से उस पर भक्ति विशेष प्रकट होती है, कृपा भगवत भक्ति हो जाती है, सुख की इच्छा भी छूट जाती है। भगवान की प्रार्थना करने से आदमी लाभ होता ही है, नियम है, इधर उधर कभी नहीं होता। प्रार्थना में कमी रहने से वो कमी रहती है, प्रार्थना में विश्वास कम रहने से कम होता है, पर होता जरूर है इसमें संदेह नहीं है। जितना विश्वास पक्का होता उतना काम बहुत जल्दी होता, एकदम ठीक बात है। दूसरा का हित होगा, हित होगा इसमें आपको जिम्मेवारी तो केवल अपने स्वार्थ का त्याग कर हित करने की है, उसका परिणाम क्या होगा वो जानो, वो सोचे तुम क्यों सोचो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे सुख देने से निरुद्यमी हो जाएंगे, उद्योग रहित हो जाएंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ये सब स्वार्थ की ही बात है। जैसे में स्वार्थ बुद्धि है, इस वजह से ऐसी ऐसी पैदा होती है बात है। होने दो, अपने दूसरों को पहुंचाओ, हित करो, फिर उसमें हित होगा, इसमें संदेह नहीं है, ये एकदम बात पक्की है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। ये बात नारायण 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 राम 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 राम। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित सोचता है तो उसका भला होता ही है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं अधम आई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, उसलिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती, सब चीज प्राप्त हो जाती है। तो ये केवल अपना विचार, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, इसमें लग जाओ, फिर स्वतः ही उन्नति होगी, स्वाभाविक भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। गीता ने लिखा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। किसी की भी सेवा मिल जाए तो बड़ा राजी हो जाए, किसी को भी सुख पहुंचाया जाए तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाएगा, आज तो इतनी सेवा हो गई हमारी। जैसे लोभी को धन मिलने से वो राजी होता है, ऐसे दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का हित हो, दूसरे का भला हो, दूसरे का लाभ हो, दूसरे को सम्मान हो, दूसरे की प्रसन्नता हो, उसमें चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। अपना अभिमान नहीं, अपनी पुष्टि नहीं, अपने स्वार्थ की पुष्टि नहीं करनी है, अभिमान की पुष्टि नहीं करनी है, अपनी बात रहनी है ये पुष्टि नहीं करनी है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना तो केवल दूसरों का हित करना, यही स्वार्थ है। दूसरों का हित हो जाए, यही हमारा स्वार्थ है, ठीक हो जाएगा। तो ते प्राप्त मंत्री नाम सर्वभूति तीर्था भक्ति हो जाएगी, और लभन ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कर्म सा। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे ऋषि है जो क्षीर कर्म सर्वभूति तीर्था है, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति चाहे तो दूसरों का हित करो, और भगवान का दर्शन चाहे तो दूसरों का हित करो, भगवान की कृपा चाहो तो दूसरों का हित करो, भगवान से प्रेम चाहो तो दूसरों का हित करो, भक्ति में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, सब मार्ग खुले हो जाएंगे। ये स्वार्थ और अभिमान ये बाधक है, तो अभिमान न बढ़े, स्वार्थ न हो, तो सबका भला होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये रामबाण उपाय है, रामबाण का अर्थ राम जी का बाण व्यर्थ नहीं जाता, जहाँ जाता है वहाँ काम कर ही देता है, वो काम पूरा कर देता है, वो कभी व्यर्थ होता ही नहीं, कभी व्यर्थ हुआ नहीं, कभी व्यर्थ होगा नहीं, कभी व्यर्थ हो सकता नहीं, उसमें ताकत है उस सबके हित करने की। तो राम जी के बाण में सब कुछ करने की ताकत है, सब कुछ काम करा करके वो आकर के पैसा तरकस में आ जाता है। जैसे वो मनुष्य भेजे काम करके पैसा आ जाए, ऐसे राम जी का बाण जाता है, सब काम करा करके पैसा तरकस में आ जाता है, सब काम कर देता है, वो व्यर्थ नहीं जाता, निरस नहीं जाता कभी। इसी तरह से दूसरों के हित की भावना है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपने सुख का त्याग, अपने सुख नौलुपता का त्याग, अपने सुख भोग का त्याग और सुख कामना का त्याग, ये त्याग होना चाहिए। देखो तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के अस्त्र है, मंत्रों से है, अभी मंत्र करके अभी अस्त्र चलाए जाए तो ये विजय करते हैं। वो तो ब्रह्मास्त्र होता है, उसका उपाय ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए तो सामने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, फिर उपसंहार करना हो तो उस ब्रह्म दोनों को अपना उपसंहार कर लो, ये ब्रह्मास्त्र का उपाय है। और वैष्णवास्त्र है, भगवान का विष्णु का, तो उसका उपाय है शरण हो जाना, भगवान के शरण हो जाए। तो भगवान के यहाँ शरणागत की बात बहुत विशेष है, जो शरण हो जाते हैं उस पर सब कुछ हो जाता है। त्याग कर सही सही भला उसका करना ही होता है भगवान को, तो उसका उपाय शरण हो जाना है। और पाशुपतास्त्र होता है वो तो बस खत्म ही करता है, शरण हो जाओ तो नहीं छोड़ता, उपसंहार भी नहीं होता, वो तो खत्म ही करता है। वो चलाना जरूरत नहीं है, अपने पास में होता है, पड़ा पड़ा विजय करता है, बिना चलाए कल्याण करता है, अपनी विजय करता है। अर्जुन के पास था ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र भगवान शंकर का, तो वो शंकर संहार करने वाले है ना, ये सुन फिर संहार हो ही जाएगा, तो पड़ा पड़ा विजय कर देता है। तो ऐसे है पाशुपतास्त्र है कि सबका हित करना है, चाहे किस तरह से हो जाए, मर जाए तो मर बेसक जाए पर करें दूसरों का हित, ये पाशुपतास्त्र है। ये आपके पास पड़ा रहेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, चलाने का अर्थ है कि एक दिन मरना पड़े दूसरों के हित करने में, मरना पड़े तब तो चला दिया, मरने से पहले तुम्हें कम पड़ जाएगा, मरने से पहले। तो ये पड़ा पड़ा उद्धार करना है, भीतर में केवल भाव होना चाहिए सबके हित करने का, उद्देश्य लक्ष्य सबके हित करने का हो तो सबका हित हो ही जाता है, निश्चित बात, पक्की बात, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, कभी भी ये बात फैल नहीं होती। जड़ है ना, जड़ जड़ में कोई तैरना चाहे तो क्या करेगा, हाथों से लातों से मारता रहे तो चल जाएगा, और यूं खड़ा और रहना शुरू कर दे जोर से लगाओ यूं पानी को तरसा जाएगा। ऐसे संसार सागर है, इसको लेना शुरू करें डूब ही जाएगा, और इसको नया नहीं लाता रहे, हाथा से मारता रहे पहनता रहे पार जाएगा। ये बात संसार सागर है ना, समुद्र है, तो मनुष्य लेने की इच्छा करता है, इसकी एक भूख है लेने की, धन मेरे को मिल जाए, मान मेरे को मिल जाए, आदर मेरे को मिल जाए, यश प्रतिष्ठा महिमा मेरी हो जाए, ये डूबने की बात है भैया, मेरे हो जाएगा नहीं, चला चला जाएगा, समझे फसल तो वही रहेगा, तुम्हारे हाथ लगेगा नहीं, तुम हाथ लगा अपने लेना चाहोगे तो डूब जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। रहने की इच्छा नहीं हो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह की बात नहीं है, एकदम पक्की सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की। तो दूसरों का हित करना है मैं तो त्रिपुरा मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, उसके लाभ होगा ही, नियम है, कभी ये बात फैल नहीं होती, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। केवल नियम यही है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना है, पर हित तो बस जिनके मन माही मन में दूसरे हित ही निवास करते, जैसे लोभी के धन निवास करता है मन में कि धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसे दूसरों का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका सर्वे भवन तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे संत मेरा भया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सर्वे भद्राणी बने, सबका कल्याण हो जाए, किसी का कभी अहित ना हो, ऐसा भाग जिसके हो जाता है, बात है ये। मनुष्य को स्वार्थ की बुद्धि में रस आता है, हमारे को घर मिला, हमारे क्या फायदा, हमारे को तो मिले जब फायदा, हमारे को मिल गया, हमारे को मिल गया, हमारे ये पशुओं में है, पक्षियों में है, देवताओं में है, राक्षसों में है, असुरों में है, जीव जंतु में है, स्वार्थ की सुख की भावना, बंदरी होती है ना, बंदरी बहुत चतुर होती है और एक एक से छीन कर बंदरों का स्वभाव है। अपने हाथ आ गए तो फिर उसको नहीं लेने देते और को, वो और ही जाएंगे। तो बंदरी का बच्चे पर स्नेह होता है, छोटा बच्चा होता है बंदरी का, उसमें इतना स्नेह होता है इतना कि वो मर जाए तो हाथों में जिन्हें फिरेगी छोड़ेगी नहीं, सूख जाए तो उसको छोड़ेगी नहीं, इतना स्नेह होता है, मरने पर भी छोड़ती। परंतु बच्चा गोदी में है कोई रोटी देगा तो खुद खा जाएगी, बच्चों को नहीं देगी। खाते हुई रोटी में से कोई कनका पड़ जाए तो वो चुगल बच्चा खा ले तो खा ले, बच्चा मगर तो खुड़की देती है, ची ची करता बार भर जाता आंधे खाए, बच्चों को नहीं देती। बच्चे तो मुंह इतना मर जाए तो सूखे तो ये हाथ में रखे, परंतु रोटी का काम पड़े तो आप भी खाती उसको नहीं देती। ये हमारी बहन माताएं है ना, इनका स्वभाव है खिलाने का। छोटी बच्चियों में ये ताकत है, छोटे लड़का लड़की दोनों होते हैं तो लड़कों को चीज दे दो खा जाएंगे, या लड़की को दो 8-10 वर्ष की 12 वर्ष की छोटी वो अपनी जेब में रख लेती है, छोटे बहन भाई को देगी, बोली मिली है बहन भाई है ना, छोटा भाई हो छोटी बहन हो उस छोटी को देगी। इसमें भगवान ने देने की शक्ति दी है, क्योंकि आगे पालन करना है बच्चों का, ऐसी नहीं होती बच्चों का पालन कैसे करेगी, तो इनमें एक ताकत है इस जाति में, स्त्री जाति में माँ होती है वो तो बच्चों का पालन करती है, परंतु स्त्री जाति है उसका भी भाव पति के पालन करने का रहता है। इस बात बड़ी एक आश्चर्य की बात बता रहा है, पतिव्रता के लक्षणों में एक बात आई है कि भोज्य सुमाता जब भोजन कराने लगे तो माँ की तरह होती हो, पतिव्रता स्त्री भोजन कराते समय माँ की तरह होती है, जैसे माँ का हृदय बच्चे को पालन करने का होता है ऐसा भोजन कराते समय उसको आराम देते समय माँ की तरह होती है पतिव्रता, सजा उसका भाव ऐसा होता है थोड़ी और दे, थोड़ा सा ये दे, थोड़ा सा ये दे। किस तरह से उसको देना, तो एक नंबर का पालन करने की शक्ति है माँ में, दो नंबर की है पत्नी में, या तीन नंबर की बहन में, बहन भी होती है तो भाई का पालन करती है। भाई बहन का इतना आदर नहीं करता है जितना बहन भाई का आदर करती है, मेरा भाई है, बड़ा स्नेह होता है सरल हृदय से भाई को भला चाहती है स्वाभाविक। इस बात से गर्व कहता है, कहना कहावत है कि बहन के भाई सासू के जमाई, सासू के जमाई होता है बहन के भाई होता है, तो भाई बड़ा अच्छा रहता है, भाई इतनी गर्व नहीं करता बहन की, परंतु बहन भाई का बहुत प्यार करती है स्नेह करती है। कई कई घर में ऐसा देखा गया, बहन बड़ी हो गई विधवा हो गई, दो चार पांच भाई है उनका ब्याह नहीं हुआ, घर में सब भाइयों का पालन करती माँ की तरह, सासरे वाला लेने को आते है ना हम ले जाओ हो जाएगी, ना ना हमारी तो माँ की जगह है, बहन हमारे माँ की तोड़ हम भेजेंगे नहीं, ऐसा भाइयों का आदर होता है। तो भाई लोग के मन में भी माँ की तरह होता है कि हमारी बहन क्या है माँ है, हमारा इज्जत भी है हमारा साथ, घर में कोई काम पड़ता है तो भाई को पूछे, अरे अपने गाय भैंस आदि ऊँटा भी बिक्री करना है लेना है तो भाई की सम्मति रहती, भाई की सम्मति कौन भाई जो करती है, सभी का सब संसार का काम करती है, घर का हित करती है, घर का हित चाहती है, काम करती है, ऐसे बहन के मन में माँ की तरह ही भाव होता है। सबका कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब भाइयों का भला कैसे हो, ऐसे बहनों के मन में रहता है भाव। तो ये छोटी बच्ची के मन में रहता है, छोटी बच्ची भी अपने छोटे बहन भाई की बड़ा सेवा करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, छोरा इतने नहीं करते, छोरा भी बहन भाई बड़े करते हैं, गोदी में रखते हैं, प्यार करते हैं, छोटा बहन छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको गोदी में रखते हैं, छोरा भी। परंतु बहन जैसे रहती है वैसा नहीं रहती, भाव नहीं होता। ऐसे हित करने की भाव भी है और इस तरह से पारमार्थिक रुचि भी छोरियों में ज्यादा होती है। सत्संग कहीं हो तो हम गिनती कर लेना, पुरुष इतने नहीं होते, तीन स्त्रियां होती है, यही कर लो अपनी मर्जी, पुरुष होगी गिनना ही करो, स्त्रियों की गिनना कर लो। तीर्थों में जाओ तो, सत्संग में जाओ तो, मंदिर जाओ तो स्त्रियों में ज्यादा भाव होता है। कार्तिक नहाते है ना तो छोरियों कितनी नहाती है, छोरा कितनी नहाती है, छोरा बोलो ही नहीं करते, छोरियों काफी नहाती है, 8-10 साल की छोरियों काफी नहाती है, नदी उठती है, छोरा बोलो ही नहीं करते, छोरा बहुत कम नहा रहे हैं, काफी नहाए तो देख लेना आप, कहें छोरा छोरी दोनों बेटा बेटी को देख लेना, तो छोरियों में ज्यादा खुशी होती है, काफी नहाएगी, मंदिर जानेगी, सत्संग में जानेगी, तीर्थों में जानेगी, भाव ज्यादा होता है, पालन करने का भाव ज्यादा होता है, सब कुछ पहुंचाने का। एक बात है इसमें ईर्ष्या होती है, वो पुरुषों से ज्यादा होती है, इसके साड़ी बढ़िया मेरी क्यों नहीं आई, इसकी इतनी बढ़िया हमारी क्यों नहीं आई, ईर्ष्या ज्यादा होती है। अगर ईर्ष्या ये छोड़ दे तो सुनो और सुनो क्यों नहीं आए, ईर्ष्या छोड़ करिए और सेवा करें, देवरा नहीं ज्यादा हो जाए, जेठा नहीं ज्यादा हो जाए, नंद के ज्यादा हो जाए, सासू के ज्यादा हो जाए, अपने स्वार्थ होते ईश्वर छोड़ दे और किसी की निंदा नहीं करे, प्रेम का बर्ताव करे, झूठ को पत नहीं करे। ये कठिन है, ये स्त्रियों में ये आने में कठिनता होती है। भाई भाई दोनों जा रहे हैं कलकत्ता और बीच में काम पड़ा, साग पूरी ले ली, फल ले लिया, दूध ले लिया, रसगुल्ली ले ली, लड्डू ले लिए, खा लिए, दोनों में खा लिए, पैसा उस भाई का लग गया, उस भाई का लग गया, परवाह नहीं है। फिर में तो महाराज एक चमचा एक लोह की कटोरी से लड़ाई कर, ये देने की क्यों चलेगी, ये देठानी की क्यों चलेगी, छोटी कटोरी, अरे देने देठानी एक ही तो है भाई भाई है दोनों, हर्ज क्या है, तो इनका ये स्वार्थ भाव ज्यादा होता है। तो स्वार्थ और ईर्ष्या ये छोड़ दे, निंदा करना छोड़ दे, निंदा नहीं करे किसी की भी, कटोरी नहीं करे, ऐसा करे तो देखो आप बहनों का जल्दी कल्याण हो जाए, भगवान का नाम ले और ईर्ष्या नहीं करे, दूसरों की उन्नति देख राजी हुए। कहीं कहीं देखा गया है देरानी और जेठानी है, देरानी की बेटा है, उसकी बहू आ गई, अब जेठानी जलती है, मेरी छोटी है इसकी बहू काम करती है, मेरे बहू नहीं है, तो भाई तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं बहू कैसे आ जाएगी, बहू तो बेटा होगा उसके आ जाएगी, मेरी से छोटी है, आराम करती है, हुक्म चलाती है, अब तेरे क्या हुआ, आनंद मनाओगे, बहुत अच्छी बात है, हमारे देरानी बड़ी आनंद से है, वो काम करती है, ऐसे खुशी मनाओ, पर वो ईर्ष्या है ना मन में है, वो नहीं होने देती, ईर्ष्या का त्याग करो, निंदा का त्याग करो, प्रेम करो, आराम आनंद मिलेगा, कैसे सुख हो जाए, नंद के आराम हो जाए, बहू के आराम हो जाए, सासू के आनंद हो जाए, देरानी के आनंद हो, जेठानी के आनंद हो, सबको सुख कैसे मिले, घर में सबको सुख कैसे मिले। यह जो बात बताई है ना, सर्वभूत ही थी रहता, विश्वास का त्याग करो तो कामना छूटती है, तो कामना तभी छूटती है जब दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना आ जाए, फिर अपने सुख की छूट जाती है, स्वतः ही छूटती, स्वाभाविक। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ के हित करने वाले गुरु हैं। तुम तुम्हार सेवक असुरा, एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त, ये बिना स्वार्थ दो हित करने वाले हैं। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, तो क्योंकि ये अच्छे अंतर्गत निर्मल होता है भगवान का और भगवान के भक्तों का, तो उनके दूसरों का हित ही सकता सदा की सबका कल्याण हो। दूसरों के हित के लिए अपने प्राण तक दे दे। बधिसी ऋषि थे, बधिसी ऋषि थे, जंगल में बैठे थे, भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो अश्विनी कुमार देवता आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमारे को ज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान आपको जो पास जिसमें मस्त आप हो, हमारे भी हो जाए, तो कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए उसको रह नहीं सकोगे, ऐसे बनो, पहले पात्र बनो। तो उनको ब्रह्मचारी बनाने के लिए भेज दिए, वे चले गए। फिर ऐसा आ गया इंद्र, इंद्र ने कहा आप जिसमें मस्त हो, पास में कोई सुख सामग्री नहीं, राज्य नहीं, वैभव नहीं, धन नहीं, रुपये नहीं, फिर भी जितने मस्त हो इतने हम मस्त नहीं। त्रिलोकी का राजा इंद्र वो अपना इतना सुख नहीं देखता जितना उनको सभी चीजें वो सुख ही देखता है। वो ब्रह्म विद्या हमारे को दो। इंद्र ने कह दिया एक कुत्ता कुतिया के साथ सुख लेता है, ऐसे तुम अप्सराओं से इंद्राणी से सुख लेता है। गधा जैसे राख में लेट करके सुख लेता है, ऐसे तुम बढ़िया बढ़िया सैया में सुनकर सोकर सुख लेता है। सूर जैसे मेला खाने में सुख लेता है, ऐसे तुम अमृत खा करके सुख लेता है। तो सूर कुत्ता ऐसा जो सुख है उस सुख में तुम लगा है रात में, तो उनसे क्या विद्या करे, कैसे ले सकेगा। इंद्र को गुस्सा आ गया कि मेरी निंदा करते। अरे निंदा तुम ब्रह्म ज्ञान चाहता तो बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, ले सकेगा ही नहीं, भोगों में लगा हुआ है। गदा जितना घुरे की राख में लेटता है, आनंद करता है, दौड़ पोट होता है, ऐसे तुम बढ़िया सैया पर सोता है, राजी होता है, तो तेरे और गधे में कोई फर्क नहीं है। इंद्र ने कह दिया कि मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, तो और कौन पात्र होगा। अब अगर किसी को ब्रह्म विद्या दी तो आपका सिर काट दूंगा, मेरे को नहीं देते तो और किसको दोगे, मेरे समाज में और कौन अभिमान। ठीक है भाई, अब आए अश्विनी कुमार कि महाराज तपस्या को तो वो कहे नहीं, बताओ ब्रह्म ज्ञान। तो क्या भाई ब्रह्म ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता। इंद्र आया, वो कहता है कि ब्रह्म ज्ञान किसी को दिया तो सिर काट लूंगा, तो सिर काटने तो कोई चिंता नहीं मेरे को, परंतु मैं ब्रह्म विद्या दे नहीं सकूंगा, बीच में काट लेगा वो, तो आप कोई दूसरा गुरु बनाओ। और कोई जरूरी अश्विनी कुमार बोले कि गुरु बना का तपस्या ये तमाशा नहीं है, जिस पर श्रद्धा बैठे विश्वास हो उसी से चीज मिलती है, जो गुरु बना रहे तमाशा है, कोई बाजार की चीज है, किसी खरीद लिया ले लिया, किसी में विश्वास बैठे तब दो, ऐसा बैठता नहीं। विश्वास थे गुरु तो आपको अपने मान लिया, मान लिया, मान ही लिया बस, अब दूसरा हो नहीं सकता, आप दे दो। तो देखो पूरा गुरु नहीं सुनूंगा, माथा काट लेगा तो क्या करूं, मुश्किल तो होगी, और मेरे को माथे की जरूरत नहीं, कट जाए तो मरना है ही, नई बात क्या हो जाए, हमारे को मरने का भय नहीं है। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि हम देवताओं के पैज्य है, देवलोक के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, विश्वास से आपका हुक्म हो तो हम आपका माथा काट रहे। क्यों माथा काट कर कहीं फेंक देगा कि मिलेगा नहीं, तो हम रख रहे दूसरा घोड़े का माथा लगा दे, वो काट फेंक करके हम पीछा लगा देंगे। फांसी एक बात होती है ठीक है, तो दूसरा सिर लगा दिया, तुम पीछा देने लगे तो उन्हें काट दिया, सिर फेंक दिया, कोई मिला नहीं, बोला नहीं लगा दिया है जगह पीछे बड़कर रखा हुआ था, ऐसा प्रेम बचा दे दिया। बिना कारण सिर काटने वाला इंद्र वृत्रासुर आप बताइए कि असुर कैसे मरे, असुर मरे ऋषि के हड्डियां से बने वज्र, तो इस ऋषि कौन ऋषि के दधीचि, दधीचि ऋषि के हड्डियां से अगर वज्र बने तो तुम्हारी विजय हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो हड्डियां देना कोई मामूली बात है, मरने से दे हड्डी कैसे चीज थोड़ी पर उठा दे। तो इंद्र पहुंचा कि महाराज हमारे जरूरत है आपकी हड्डियों की, ले जाओ बिना कारण सिर काटने वाला कोई इंद्र का कसूर किया नहीं, सिर काट दिया, वो मांगता है हड्डियां तो बैठे। अब उसको कहे जी कैसे दे दे भाई, तो हम प्राण छोड़ देते सिर को दे दो, प्राण छोड़ दिया। अब कहा विश्वकर्मा को हड्डियां बनाओ, हड्डियों का वज्र बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा ब्राह्मण की सही वो चीजें करो, ब्राह्मण आए ब्राह्मण ब्रह्म हत्या लगे, मरने पर भी हम नहीं जीत सकते, तो क्या करें, तो गौओं को बुलाई, काम धन गौ आई, गौ ने चाट करके मांस सब वो सब हड्डियां उसको फिर वज्र बनाया। तो गौ का गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध, मुंह अशुद्ध है, गौ अगर मुंह छुआ दिया तो वो सीधे अशुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो उन हड्डियों का फिर वज्र बनाया। कहने के बाद इतना ही था भाव कि बिना कारण सिर काटने वाले को शरीर छोड़कर हटे, ये संतों का भाव होता है। दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरे का भला हो, दूसरे की विजय हो, दूसरों का यश हो, दूसरों को मान मिले, दूसरों को सुख मिले, ये भाव भीतर होने से आदमी की उन्नति होती है। तो दद्दिंग ऋषि की ऐसी कथा होती है, दूसरों के हित में रत हो जाओ, मनुष्य सफल हो जाए। दो ही बात है, एक तो भगवान का भजन करना और एक दूसरों की सेवा करना, ये दो बात है खास।